तू करीब इतना मुझे शाम सहर लगता है, तू करीब इतना मुझे शाम सहर लगता है, दिल की शाहों पे मोहब्बत का समर लगता है। देखी अनदेखी बहारों का असर लगता है, और कुछ खुशियों के चिन जान का डर लगता है। कुछ भी नहीं आतिश इश्क है के बचा कुछ भी नहीं।
हम शांति तू करीब इतना मुझे शाम और सहर लगता है, दिल की शाखों पे मोहब्बत का समर लगता है, देखी अनदेखी बहारों का असर लगता है, और कुछ ख्वाहिशों के छिन जाने का डर लगता है। तू मिला है तो कहूं कैसे, मिला कुछ भी नहीं, आतिशे इश्क है ऐसे कि बचा कुछ भी नहीं। कवि लिख रहा है कि तू करीब इतना, कितना करीब कि मुझे शाम और सहर, सुबह शाम इतना करीब लगता है, दिल की शाखों पर, दिल जैसे क्या है, पेड़ है, उसकी शाखों पर मोहब्बत का समर, समर अर्थात फल, दिल की शाखों पे मोहब्बत का समर लगता है, देखी अनदेखी बहारों का असर लगता है, और कुछ ख्वाहिशों के छिन जाने का डर लगता है। तू मिला है तो कहूं कैसे, मिला कुछ भी नहीं, कैसे मैं कहूं कि कुछ भी नहीं मिला, परंतु ये जो मोहब्बत है, ये जो इश्क है, ये क्या है, आतिशे इश्क, आतिश अर्थात आग, आतिशे इश्क है ऐसी कि बचा कुछ भी नहीं। ये प्यार की आग ऐसी लगी कि कुछ भी नहीं बचा। आज की साकार मुरली है मीठे बच्चे, योग अग्नि के समान है, योग किसके समान है, आग आतिश फायर के समान है, जिसमें तुम्हारे पाप क्या हो जाते, जल जाते हैं, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, इसलिए ए बाप की याद में रहो। तो ये योग कैसा है, आग की तरह है, द फायर ऑफ योगा। उर्दू में कहते हैं आतिशे इश्क, और रोज और कुछ रोज बेमौसम ये बदल जाएगा, तू भी आ जाएगा ये दिल भी संभल जाएगा, मैंने सोचा था मगर हुआ ऐसा कुछ भी नहीं, आतिशे इश्क है ऐसी कि बचा कुछ भी नहीं, रंग ही रंग है तस्वीर नहीं है कोई, और इस ख्वाब की ताबीर नहीं है कोई, जानना कुछ भी नहीं सोना मेरा कुछ भी नहीं, आतिशे इश्क है ऐसी कि बचा कुछ भी नहीं। योग की तुलना आग से की है, क्यों, बाबा ने कहा मीठे बच्चे ये योग किसकी तरह है, अग्नि की तरह है, ये आतिशे इश्क है, तो ये जो आतिश है, ये जो आग है, उसको आग क्यों कहा गया? आग की कम से कम 9 विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो आग का स्वभाव उष्णता है, हीट। आग का स्वभाव क्या है? उष्णता। आग हमें सिखाती है कि तुम्हारे अंदर भी क्या होनी चाहिए, उष्णता, तेजस्विता, ब्रह्मचर्य की तेजस्विता, पवित्रता की तेजस्विता। ठंडाई नहीं होनी चाहिए, गर्माई होनी चाहिए, गर्माइश। तो आग की सबसे पहली विशेषता है हीट। 9 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फायर। पहला, उष्णता है आग में बहुत ज्यादा। दूसरा, आग अप, कहां उठती है? ऊपर जाती है। वो मोमबत्ती को ऐसा करो उल्टा, कहां जाती है आग? नीचे जाती है कि ऊपर जाती है? आग का स्वभाव है ऊर्ध्वगमन। आग हमेशा फ्लोज अप, नीचे कभी नहीं जाती है, डाउन नहीं, अप। ये फायर का स्वभाव है। तीसरा, आग में कुछ भी डालो वो अपने समान बना देती है। सेम, आग हर चीज को अपने समान बना देती है। चौथा, जहां आग है वहां पर प्रकाश है। आग क्या करती है? प्रकाश को फैलाती है। जिस हृदय में आग है वहां प्रकाश अपने आप फैलेगा। पांचवा, आग में ज्वलन शक्ति स्वयं धारण किए हुए आग, इसलिए तो दूसरों को भी प्रज्वलित कर सकती है। उसके अंदर ज्वलन शक्ति है, इसलिए दूसरों को अग्नि दे सकती है। जिसमें ज्वलन शक्ति ही नहीं है, दूसरों को आग कैसे लगाएगा? तो योग की आग तो खुद जली हो अंदर, तो ही दूसरों को आग। दूसरों को आग लगानी है तो क्या करनी पड़ेगा? खुद अपने अंदर आग जलानी पड़ेगी। चैरिटी बिगिंस एट होम। आग अंदर होगी, इनसाइड फायर, आउटसाइड फायर, तो ही बाहर आग लगेगी। उसके बाद में आग कभी मलिन नहीं होती है। यह होती है, गंदी चीजें आग में डालो तो आग गंदी हो जाती है क्या? आग भभक रही है, लपटे उठ रही है, उसमें कचरा डाल दो, प्लास्टिक डाल दो, पेपर डाल दो, सब बस खलास। आग को कंप्लेंट है, मेरे अंदर इतना गंदा गंदा क्यों डाला? मैं गंदी हो जाऊंगी, मैं मलिन हो जाऊंगी। आग कहती नहीं है कुछ, क्योंकि उसमें जो कुछ डाल दो क्या हो जाता है? भस्म हो जाता है। आग अस्पर्शित है। आग को संस्कृत में पावक कहा जाता है। पावक अर्थात जो पवित्र करे। आग को लैटिन में प्लूरस कहा जाता है, दैट मीन्स प्योर। उत्तरी अमेरिका में एक कहानी है कि आग का जन्म कैसे हुआ। एक भैंसा था, वो भाग रहा था, फिर उसके जो खुर, खुरी कहते हैं ना, उसके निशान एक पत्थर से टकराए, तो एक चिंगारी उठी, और चिंगारी जब उठी तो पूरा जंगल जल गया। जंगल में आग लगी दावानल, और तब से मनुष्य ने वहां से आग की खोज की। ऐसी थोड़ी सी विचित्र कहानी है आग के खोज के बारे में। फिर आग अपने पास कुछ भी नहीं रखती है। आग में जो कुछ डालो वो हवा को समर्पित कर देती है, या शास्त्र कहते हैं देवताओं को समर्पित कर देती है। आग अपने पास नहीं करती, और आग में जो भी डालो वो सूक्ष्म हो जाता है। ये डस्टर को आग में डालो, बड़ा होगा कि कम होगा? कम हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है, और आग अपने पास कुछ भी नहीं रखती है। और आग जब तक है तब तक उसमें उष्णता है, उसका स्वभाव उष्णता है। अगला, जब तक आग जलती रहेगी उष्णता उसके साथ रहेगी। और दूसरी चीज आग के विषय में, भस्मांतम शरीरम, भस्मांतम शरीरम अर्थात ये शरीर भी एक दिन आग में मिल जाना है, ये भूलना नहीं है। तो बाबा ने आज कहा योग अग्नि के समान है, पावक क्षिति जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व क्षिति जल पावक गगन समीरा, इन पांच से ये शरीर बना हुआ है। तो मीठे बच्चे योग कैसा है? अग्नि के समान है जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। इसलिए एक बाप की याद में रहो। भारतीय संस्कृति में एक प्रथा थी अग्नि मंथन। क्या होता है वो? अग्नि मंथन। आज की इस क्लास का टॉपिक भी यही है, योग अग्नि मंथन। पर अग्नि मंथन क्या होता है? उसको अरणि मंथन भी कहते हैं। अग्नि मंथन देखा है किसी ने? देखा है ना, लकड़िया, लकड़ियों से आग प्रज्वलित की जाती है, उससे यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित होगी। और वो कैसे होती है? मंथन से। वो एक सन्यासी, एक साधु बैठता है, हाँ, तिल की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, उसी से होगा वो, बाकी और लकड़ियों से नहीं होता है। जैसे एक गड्ढा जैसे बनाएंगे, उसके ऊपर दूसरी लकड़ी डालेंगे और उसको रस्सी लगा के जोर से करेंगे, तब तक जब तक आग प्रज्वलित नहीं हो जाती है। इस विधि को कहा जाता है अग्नि मंथन, मंथन करने से आग को प्रज्वलित करना, जर्निंग ऑफ फायर, अरणि मंथन। और फिर जो जोर से करते रहो, फिर धुआं धुआं निकलने लगता है, फिर उसको वहां से उठाना, वो जो यज्ञ बना हुआ है उसमें रखना, कपास वगैरह डालते, फिर थोड़ा थोड़ी आग दिखती है, फिर उसको फूंक के बड़ा बड़ा करना, टाइम लगता है। इसके वीडियो भी है, वो देख सकते हैं कैसे टाइम लगता है उसको, बिल्कुल जैसे कि अभी बुझने वाली है, क्योंकि जोर से रगड़ते हैं, मंथन करते हैं, और फिर उसमें डाल के पहले कपास वगैरह रखते हैं उसमें, और फिर वो उसको आग लगती है, और फिर आग बड़ी होती है, उससे यज्ञ किया जाता है। उस विधि को कहा जाता है अग्नि मंथन, आग को प्रज्वलित करना। हमें भी आग को प्रज्वलित करना है, पर कैसे? योग से। हमें भी आग को प्रज्वलित करना है योग से। आतिशे इश्क है ऐसी कि बचा कुछ भी नहीं। आग क्या कर देती है? सबको भस्म कर देती है, खाक कर देती है। तो हमें भी योग की ऐसी अवस्था को प्राप्त करना है जो ज्वाला हो, आग हो, फायर हो, जिसमें बहुत कुछ भस्म हो जाए। योग करे तो लगे योग भवन से अभी निकल के बाहर आ रहे हैं। ज्वाला का भवन क्या बन जाए? ज्वाला का भवन, अग्नि भवन में बैठे थे, अभी निकल के बाहर आए, अंदर सब कुछ भस्म हो गया है, नया जीवन जैसे मिल गया है। तो दो प्रश्न है, पहला ये अग्नि मंथन, योग की अग्नि मंथन की विधि, और दूसरा कौन सी चीजें हैं जो इस योग की आग में भस्म हो जाती है। आज के मूल्य में एक चीज और कही है बाबा ने, याद की फांसी, लटके रहो बस इस फांसी में, भले बच्चों को याद करो, परंतु सच्चा प्यार एक बाप से रखो, बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे, बस इस याद की फांसी में क्या करो? लटके रहो ऐसे। ममत्व हटा दो, स्लोगन है आकर्षण के संस्कार, क्या करो उसका, उससे वैराग आ जाए, सब उसको दे दो, वो बेहद का करनी घोर है, वो आया है पुराना उसको दे दो, वो तुमको क्या देगा, ब्याज, वो तुमको क्या देगा, पेमेंट, 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 सैलरी, पगार, अच्छी पगार देगा, क्योंकि वो डायरेक्टर है, तुम एक्टर्स हो, तो पगार, ब्याज, कल कहा था सौगात, तीरी पर सौगात लाया हूं, हर दिन नए नए शब्द है, नई नई बातें हैं, रूहानी खातरी, रूहानी दृष्टि, रूहानी सर्विस, रूहानी अक्षर, कल की मुरली, रूहानी ड्रिल, रूहानी बाप, रूहानी बच्चे, कितने रूहानी थे, लिस्ट निकाली जा सकते कल की मुरली से, केवल रूहानी पढ़ाई, रूहानी ड्रिल, रूहानी बाप, रूहानी बच्चे, रूहानी सर्विस, रूहानी दृष्टि, रूहानी अक्षर, कल एक की, कल की मुरली केवल, रूहानी नेत्र, दृष्टि, तीसरा नेत्र, वो भी रूहानी नेत्र हो गया। तो सबसे पहला प्रश्न है क्या करें, इसका आग को कैसे प्रज्वलित करें, मंथन करके आग को प्रज्वलित करना है। ऐसी आग के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, संपूर्ण शरीर अवस्था, संपूर्ण मौन, संपूर्ण एकांत, संपूर्ण बीज रूप स्थिति, संपूर्ण कंबाइंड स्टेज, संपूर्ण वैराग्य, संपूर्ण तपस्वी जीवन, संन्यस्त जीवन, तो ये ऐसी आग प्रज्वलित होती है, उसके सिवा ये आग प्रज्वलित नहीं होती है, क्योंकि आग बनानी है तो उसके लिए तपस्या भी उतनी ही चाहिए। जो योग हमारी, योग हमारा ऐसा हो जाए कि लगे कि अंदर आग प्रज्वलित हुई है, और बिना उस मौन के, बिना उस संपूर्ण मौन के, बिना उस संपूर्ण त्याग के, ये आग प्रज्वलित नहीं होगी। संपूर्ण कंबाइंड स्टेज, संपूर्ण अशरीरी अवस्था, संपूर्ण विदेही अवस्था, संपूर्ण बीज रूप स्थिति, संपूर्ण अंतर्मुखता, संपूर्ण एकांत, संपूर्ण मौन, संपूर्ण अखंड पवित्रता। आज की मुरली में है खान पान पर किसका असर होता है, धारणाओं पर असर होता है खान पान का, पवित्रता बहुत अच्छी चीज है। जहां भोग की बहुत इच्छाएं हैं वहां योग नहीं हो सकता, या फिर जहां आत्मा भोग में डूबी हुई है वहां योग नहीं हो सकता, क्योंकि भोग योग का शत्रु है, और भोग में भी बहुत सुख है, चरम सुख है उसमें, और सारी दुनिया उसी सुख के पीछे है। ऐसे ही थोड़ी ना संसार ने सुख को, काम को पकड़ के रखा है, क्योंकि उसमें सुख है, स्पर्श में एक साथ पांचों प्रकार के सुख है उसमें, विकारों में रूप रस स्पर्श शब्द गंध, बाकी विकारों में थोड़े थोड़े है, काम में सब एक साथ, इसलिए सारा संसार उसमें डूबा हुआ है। पर वो क्षणिक है, पर उस दिन हमने देखे थे आठ दोष है संसार के सभी सुखों में, कौन कौन से, सबसे पहला उसमें स्लेव मेंटेलिटी है, अटैचमेंट है, वो सारे सुख क्या क्रिएट करते, अटैचमेंट उत्पन्न करते, हमें गुलाम बना देते, फिर वही चाहिए, उसकी गुलामी हो जाती है। दूसरा बहुत थोड़ा सा सुख है और ज्यादा दुख है उन सभी सुखों में। अगला क्या करते हैं, आपने नोट किए थे अच्छा डायरी में, और क्या करते हैं ये सारे, क्रेविंग उत्पन्न करते हैं, सी क्रेविंग अर्थात तलब, जैसे कोई 20 साल से दारू पी रहा है, उसको कहो छोड़ दो दारू, चार दिन के बाद बेचैनी होती है, कंपन होने लगता है शरीर में, चाहिए उसे, वैसे इंद्रिय सुख भी वैसे ही है। उसके बाद में इंद्रिय सुख कैसे है, टेम्पररी है, अब है कल नहीं है, थोड़े समय के लिए है बस, ज्यादा समय नहीं टिकते वो। अभी अभी सुख मिला, पर सुख कितना कम समय रहता है, अभी अभी है अभी अभी गया। डी डिसेप्टिव है, धोखेबाज है, धोखा दे देते इंद्रिय सुख, ऐसा लगता है सुख बोले मिलेगा पर मिलता कुछ और ही है, आशा है, कामना है, अपेक्षा है, इतनी रखते पर सुख प्राप्त होने के बाद पता चलता है वो जो कल्पना की थी उतना नहीं मिला, कम मिला बहुत। एफ फ्लिटिंग क्षणभंगुर जी, ज्ञान का दुश्मन है ये इंद्रिय सुख, क्या है ज्ञान का दुश्मन, योग का दुश्मन है, और सारा संसार इसमें डूबा हुआ है, इसीलिए तो डूबा हुआ है कि उसमें सुख है, क्षणिक सुख है उसमें। एच हैबिट फॉर्मिंग, आदत बना देता है वो, और आदत एक बार बन गई तो फिर वही चाहिए, उसके सिवा बेचैनी होती है। तो आदत ज्ञान का दुश्मन, क्षणिक धोखेबाज, क्रेविंग उत्पन्न करने वाला, तलब उत्पन्न करने वाला, बहुत थोड़ा सुख है और ज्यादा दुख है, मिक्स्ड है वो, प्योर नहीं है, मिक्सचर है उसमें, और पहला गुलाम बना देता है वो। और क्या करता है, और एक चीज करता है एग्जर्शन, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है वो पाने के लिए, कितने षड्यंत्र, कितने क्या क्या पैसा खर्च करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, व्यक्तियों को खुश करना पड़ता है जिनसे सुख चाहिए, बहुत ऊर्जा जाती है उसमें, एग्जर्शन बहुत है इंद्रिय सुखों में, एनर्जी बहुत जाती है और मिलता बहुत कम, सब तरह की एनर्जी, समय की ऊर्जा, सब 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 लगती है। ये 9 डिफेक्ट्स है इंद्रिय सुखों के, जिनका निरंतर चिंतन होता रहे, पश्चाताप, कुंठा, फ्रस्ट्रेशन, परिणाम, सर्वनाश, और कितना भी एक बीमारी की तरह है वो, एक एडिक्शन है, एडिक्शन, इसलिए तो भगवान ने आके डी एडिक्शन के सेंटर खोला है ये, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय क्या है, पुनर्वसन केंद्र, यहां पे रोग मुक्ति दिलाई जाती है। तो योग को अग्नि बनाने के लिए क्या चाहिए, संपूर्ण अखंड पवित्रता, तभी ये योग, अगर पवित्रता में मिक्सचर है तो ये आग भी बढ़ेगी नहीं, भपकेगी नहीं, आग अभी बुझ गई, धुआं ही ज्यादा निकलते रहेगा बस। तो ये उर्दू कवि लिख रहा है, तू करीब इतना मुझे शाम और शहर लगता है, इतना करीब है तू कि बस तू ही दिखाई देता है, शाम और शहर, दिन में सुबह और रात शाम को, दिल की शाखों पे मोहब्बत का समर लगता है, दिल की शाखें, दिल जैसे झाड़ है उसकी शाखों पे मोहब्बत का समर, समर अर्थात फल, देखी अनदेखी बहारों का असर लगता है, और कुछ ख्वाहिशों के छिन जाने का डर लगता है, तू मिला है तो कहूं कैसे मिला, कुछ भी नहीं, आतिशे इश्क ऐसी है कि बचा कुछ भी नहीं, आग है ये, तेरे सिवा कुछ याद ही नहीं आता है, तू ही दिखाई देता है बस। एक राजा एक साधु के पास पहुंचता है और कहता है कि मुझे परमात्मा का स्मरण करना सिखाओ। तो साधु उसे सिखाता है, परंतु उस राजा के पास एक ऐसा हीरा है जो उसे बहुत प्रिय है, जो उसे किसी युद्ध में प्राप्त हुआ था, और दिन रात वो हीरा अपने ही पास रखता है, और जैसे ही वो भगवान को याद करने जाता है उसे बस वो हीरा ही दिखाई देता है, जब देखो वो हीरा ही दिखता है। वो कुछ दिनों के बाद वापस साधु के पास जाता है, कहता है क्या करूं, ये हीरा बाधा है, और वो ये सोचता है अब साधु हमेशा की तरह कहेगा हीरे को त्याग दो, कहेगा इसको छोड़ दो, ये बाधा है, ये विघ्न है। तो साधु कहता है अच्छा तो तुमको हीरा याद आता, अब तुम एक काम करो, परमात्मा को छोड़ दो, हीरे पर ही ध्यान केंद्रित करो, बस उसी को याद करते रहो, क्योंकि जब उसको भगवान को याद करते हो तो हीरा बीच में आता है और फिर उसको हटाओ, अब हीरे को ही याद करोगे तो किसको हटाओगे, फिर तो हटाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दिन रात हीरे का चिंतन करते रहो बस, जब भी ध्यान में बैठो हीरे हीरा हीरा ही हीरा देखते रहो। तो वो वैसा ही करता है, तो हीरा हीरा देखते रहता है, पर धीरे धीरे हीरा मिट जाता है और भगवान रह जाता है। हम कमरे में हैं और कोई खर्राटे भर रहा है और हमारे मन में संकल्प है इसके वजह से मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती, क्या करें? क्या करें? हाँ, उसके खर्राटे को पूरा ध्यान केंद्रित कर दो, ये म्यूजिक है, क्योंकि कुछ और करने की कोशिश करेंगे तो इसको हटाओ, फिर उधर ऑफिस में जाओ, उनको कहो कमरा चेंज कर दो, चंद्रशेखर भाई कमरा चेंज कर दो, ये दूसरा ठीक नहीं है। उसी पर केंद्रित कर दो, धीरे धीरे वो जो चीज है वो मिटती जाएगी। ये मन के बड़े सूक्ष्म नियम है। उसको कहो कि तुम्हें सफेद बंदर को याद नहीं करना है। मन कहेगा सफेद, मैं तो किसी भी बंदर को याद नहीं करता, और सफेद बंदर तो मैंने देखा ही नहीं है। योग में बैठो तो सफेद ही बंदर दिखाई देगा, कभी कंधे पर आकर बैठ जाएगा, कभी सिर पर, कभी पीछे से खुजली करेगा, कभी खिड़की पर, कभी दरवाजे पर। उसको कह दो ये नहीं, तो बस वो वहीं उसी के पीछे भाग जाता है। इसके लिए सूक्ष्म मन के इस स्वभाव को भी समझना है कि उसको चाहिए क्या। उसको अगर वही चीज याद आती है, योग में बैठे और जिलेबी जिलेबी जिलेबी, योग को छोड़ो, बाबा को हटा दो, खाली जिलेबी पर फोकस करो, धीरे धीरे जिलेबी मिट जाएगी और ज्योति बिंदु आ जाएगा। उस जिलेबी में भी फिर बिंदु दिखाई देने लगेगा। हम देखते वही है जो हमें दिखाई देता है। एक अंग्रेजी लेखक ने लिखा है, वो किसी उसकी जो प्रेमिका थी उससे बहुत प्यार करता था, उसे खत लिखता था, तुम्हारी जो मुख जो है ना उस चांद की तरह है, ऐसे लिखते हैं ना कभी, तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हारा मुख चांद की तरह है। और फिर उसने लिखा, एक बार क्या हुआ कि मैं जंगल में खो गया, 3 दिन तक भूखा प्यासा रखा, और जब चंद्रमा की तरफ देखा तो उसमें भी रोटी दिखाई देने लगी। अब वो उसका प्रेमिका नहीं दिख रही है, क्या दिख रही है? रोटी दिख रही है वो चंद्रमा। तब क्या दिख रहा था, अब क्या दिख रहा है? तो धीरे धीरे वो चीज खो जाती है। अगर हमने कहा ये बाधा है, उसी पे फोकस करना चालू करो, धीरे 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 वो हट जाएगा। उसका जो आकर्षण है, आकर्षण का सामना करना है, ये इस चीज से इतना आकर्षण है, उसको ही देखो और उसके अवगुणों का चिंतन करो, उसकी निगेटिविटी का चिंतन करो, धीरे धीरे वो हटते जाएगा। ये भी एक सूक्ष्म मन की विधि है। तो इस योग अग्नि के लिए क्या चाहिए? संपूर्ण मौन, संपूर्ण अंतर्मुखता, संपूर्ण एकाग्रता, संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण अशरीरीपन, संपूर्ण विधेयी अवस्था, संपूर्ण एकांत, संपूर्ण बीज रूप स्थिति, संपूर्ण वैराग्य और संपूर्ण कंबाइंड स्टेज। ये सारी चीजें चाहिए। जब योग क्या बन जाएगी? अग्नि बन जाएगी। और इस योग अग्नि में क्या क्या भस्म होता है, तो रोज योग करते करते ऐसे अनुभव करना है कि किरणें वहां से आ रही है और मुझ आत्मा में बहुत सारी चीजें भस्म हो रही है। कौन सी चीजें? ऐसी 21 बातें हैं जो भस्म होते हुए देखना है अपनी आंखों से, कि वहां से अग्नि आ रही है, यहां अग्नि ने स्पर्श किया है और मेरे अंदर का ये चीज, ये जो चीज है, ये भस्म हो रही है। सबसे पहली चीज तपत, आग का आग की महसूसता करनी है। ये आग कहां से आ रही है? कमरे में हीटर भी नहीं है, ठंड भी बहुत है, फिर भी महसूस नहीं हो रही है, पता नहीं आग कहां से आ रही है, शायद अंदर से आ रही है। तो सबसे पहली बात जो मुरली में है, जो महावाक्य में है, इस योग अग्नि से तुम्हारे क्या भस्म हो जाते हैं? पाप। क्या भस्म हो जाते हैं? पाप। तो अनुभव करना है, क्या अनुभव करेंगे? अब तक के किए हुए विकर्म। कौन से विकर्म? ब्राह्मण बनने के पहले वाले, ब्राह्मण बनने के बाद वाले, और ब्राह्मण बनने के भविष्य में जो हो सकते हैं संभावित, उसके बीज जो हम बोते रहते हैं दिन भर, वो भी संचित। तो सबसे पहले पाप भस्म हो रहे हैं। इस ब्राह्मण जीवन में ब्राह्मण बनने के बाद किए हुए विकर्म सारे भस्म हो रहे, ना तो पश्चाताप है कोई, ना तो आत्मग्लानि है, ना अपराध भाव ही रहा है कुछ, क्योंकि आज के योग में जो अग्नि आ रही है वो अग्नि का सागर है, आग आ रही है, आग की लपटें आ रही है। आत्मा जलती नहीं है, परंतु विकार आत्मा को जलाते जरूर है। नयनम छिंदंती शस्त्राणी नयनम दहती पावक, पाप पावक आत्मा को जला नहीं सकते, पर ये विकार जो है वो क्या करते हैं, आत्मा को जलाते हैं। बहुत अनुभव करना है कि मेरे सारे पाप, मेरे सारे विकर्म भस्म हो रहे हैं इस योग की अग्नि से, पहला। दूसरा विकार, पहला विकर्म, दूसरा विकार, जो भी सूक्ष्म अंश बचे हुए विकारों के, सूक्ष्म अति सूक्ष्म अंश, वो सब भस्म हो रहे हैं। देखना है उसको कि आग आई, आत्मा जल रही है, और उसमें जो सूक्ष्म अभिमान है, सूक्ष्म अहंकार है, उसमें जो सूक्ष्म सेमी काम का नशा, बाबा के महावाक्य, सेमी काम का नशा, कल की मुरली में था, किसी को देखो तो क्या समझो, आत्मा भाई से बात कर रहा हूं, आत्मा भाई से बात कर रहा हूं। जब आत्मा देखेंगे तो क्या होगा, दो चीजें होगी, आत्मा देखेंगे तो कर्मेंद्रिया चंचल होना बंद हो जाएगी, क्योंकि शरीर को देखते ही कर्मेंद्रिया चंचल होती है। शरीर में उत्तेजना उत्पन्न कब होती है, जब शरीर को देखा जाता है। शरीर को देखो ही नहीं, उत्तेजना खत्म। मन से भी देखा जाए शरीर को, केवल कल्पना की जाए, सेंशुअल फैंटेसीज जिसको कहते हैं, बैठ के व्यक्ति शरीर को देखे, कल्पना करे, अपने आप उत्तेजना होती है। बाबा ने कहा आत्मा देखो, आत्मा को देखते ही चंचलता समाप्त होगी, और कर्मेंद्रिया जब चंचल होती है तो विकारों की ओर उत्तेजित होती है, विकारों की आग उसमें लगती है, बेचैनी होती है, हलचल होती है, और फिर विकर्म हो जाते हैं। किससे? शरीर को देखने मात्र से। अंदर के विकार इस आग से क्या हो रहे हैं, भस्म हो रहे हैं, ये अनुभव करना है। बाबा के कमरे में योग में जब बैठते हैं तब, और योग का समय भी बढ़ाना है, एक घंटा बैठ लिया, दो घंटा बैठने से कुछ नहीं होगा, तीव्र पुरुषार्थी अर्थात बैठा हुआ योग, कम से कम 4 घंटा, तो 4 बजे उठने से तो बिल्कुल भी नहीं होगा ये काम, 3:30 बजे भी नहीं होगा, और भी पीछे जाना पड़ेगा, और भी पीछे जाओ, और भी पीछे जाओ, धीरे धीरे पीछे जाते जाओ। अब ये मत कहना हम तो मुरली सुन रहे थे, हमारा योग चल रहा था। अब ये मत कहना हम तो कर्मयोगी है, वो कर्मयोगी हो बहुत अच्छा, पर योग अर्थात तपस्या अर्थात बैठकर तपस्या की जाती है, वो भले करो, उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, खाते में जमा हो जाएंगे, पर मेन मार्क्स बैठ के अर्थात शरीर जिसमें स्थिर हो जाए, शरीर हिलना बंद हो जाए, जैसे वो लोग समाधि में कैसे जाते थे, बस ऐसे उंगली भी नहीं हिलती है इधर से उधर, ऐसी एकाग्रता, ऐसी अशरीरी अवस्था। आत्मा डोलने लगे अतींद्रिय सुख में, 3 दिन पहले था, अतींद्रिय सुख की भासना किनको आती है, गोप गोपियों को। जो आत्मा इंद्रियों में डूबी है, इंद्रिय सुखों में, उसको अतींद्रिय सुख का तो अनुभव ही नहीं है, सारे दिन भर तो सेवाएं चल रही है, अतींद्रिय सुख कहां मिल रहा है, सारे दिन भर सुबह से शाम तक या तो किचन में है, या तो भोजन खा रहे हैं, या बना रहे हैं, या भाषण दे रहे हैं, या सेवा कर रहे हैं, या कोर्स करा रहे हैं, उसमें भी सुख है, अलौकिक सुख है, पर अति इंद्रिय सुख अर्थात शरीर भूल जाए, डेड साइलेंस, और वो काम होगा केवल अमृत वेला। दिन भर हो रहा है वो दूसरा, पर अमृत वेला इसके लिए क्या करना है, 15-15 मिनट हर एक पीछे ढकल दो अपने आप को, धक्का लगाओ पीछे, 3:30 को थोड़ा धक्का लगाओ, 5 मिनट पीछे जाओ, 3:25, जो 3:25 वाले हैं वो, और धक्का लगा के 3:15 तक आ जाओ, घड़ी को पीछे घुमाओ, पीछे ऊपर से लटको और खींचो। उस दिन मुरली थी 18 जनवरी की, सुबह कब होती है, 12:01 में AM चालू हो जाता है, किसी मुरली में अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने कहा है अमृत वेले का समय 1:30 बजे के बाद है, हाँ वो टाइम गंदा होता है तब तक ऐसे बोला है उसमें, तो डेढ़ बजे के बाद बोला है पीछे 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 जाना है, पर अपनी दिनचर्या को देखते हुए, सेवाओं को देखते हुए, नींद का समय देखते हुए, सारी चीजें देखते हुए उसको सेट करना है, ताकि नींद भी अच्छी हो, ओवरऑल 6 घंटे हो जाए नींद पूरे 24 घंटे में कैसे भी करके, और तपस्या भी अच्छी हो, अनुभव भी अच्छा हो। तो दूसरी चीज जो भस्म होती है वो क्या है? विकार। तीसरी चीज जो भस्म करनी है वो है पुराने संस्कार। पुराने संस्कार अनुभव करना है, मेरा ये रोने का संस्कार, दुखी होने का संस्कार, बात में रूठना रूसना नाराज होने का संस्कार, फीलिंग का संस्कार, किसी को कुछ कहने का, हर्ट करने का, खुद हर्ट होने का संस्कार, दुखी होने का संस्कार, मूड ऑफ, किसी ने कुछ बोल दिया बस अब 3 दिन हम बात नहीं करेंगे, 3 दिन नंबर डिलीट ब्लॉक, 3 दिन के बाद नंबर कहां है ढूंढ रहे, वापस याद आ रही है उसकी, फिर से ढूंढ रहे कहां से नंबर, यहां से ले रहे वहां से ले रहे, पता नहीं कितनी बार नंबर सेव करते डिलीट करते, सेव करते डिलीट करते, कभी प्यार आता है कभी घृणा, कभी प्यार फिर घृणा, लव हेट रिलेशनशिप, उसी को प्यार करते उसी को दबोचते हैं, वो चाहिए भी और नहीं भी चाहिए, अजीब है, खरोज भी उसको ही लगानी है, प्यार भी उसी को करना है, पुराने संस्कार भस्म हो रहे। दूसरा चौथा पुरानी यादें, पुरानी सारी यादें, दर्दनाक यादें, बचपन की दर्दनाक यादें अब तक लिए चल रहे, बचपन में मेरे साथ माँ बाप बचपन में मर गए थे, माँ बाप का प्यार नहीं मिला, अरे इधर माँ बाप मिल गया ना भी, बाप फिर भी वो भूले ही नहीं, मेरी माँ बचपन में गुजर गई थी तो ये बाप इधर बैठा है ना, मेरी कोई बहन ही नहीं है, इतनी बहनें तो है मेरा कोई भाई नहीं है, किसको राखी बांधू पुरानी दर्दनाक यादें, हमारे माँ बाप ने हमारे साथ ये किया, मेरे बड़े भाई को सब किया, मेरे साथ ऐसा किया, उसको कॉन्वेंट स्कूल में डाला, हमको इधर हिंदी मीडियम में डाल दिया, गवर्नमेंट में सरकारी में, उसको ट्यूशन हमको ट्यूशन, हमको पढ़ने के लिए भी पुरानी किताबें उसकी पढ़ी हुई अंडरलाइन की हुई, उसको नई नई, हमको पुरानी इच्छा भी नहीं होती, वो पुरानी ऑलरेडी जिसमें अंडरलाइन है पढ़ने की, फटे हुए पेज, यही होते रहा है बचपन से, उधर भी वही हुआ ब्राह्मण बनने के बाद, इधर भी वैसा ही हो रहा है, पूरा जोड़ा है, टोली लेने जाओ सबको अच्छा आम मिलता है, हमको मिलता है तो सड़ा हुआ, सबको गुलाब जामुन मिलते हमारी थाली में कटोरी में छोटा गुलाब जामुन, देखा ऐसा बचपन से होता है, आज का नहीं है ये हमेशा ही ऐसा हुआ है, गाड़ी में जा रहे थे एक्सीडेंट हो गया, हमारा फ्रैक्चर बाकी सब बच गए, पुरानी यादें। उसके बाद में भय, चिंता, उदासी, भय चिंता उदासी एक साथ सब भस्म, ना भय रहा ना कोई चिंता ना कोई उदासी, क्योंकि योग की आतिश, आतिश इश्क ऐसी कि बचा कुछ भी नहीं, आतिश इश्क ऐसा कि बचा कुछ भी नहीं, भय चिंता उदासी कुछ नहीं रहा। उसके बाद में आलस, अलबेलापन, छठे विकार, सूक्ष्म विकार, आत्मा में आग लगी है, उत्तेजना आई है, तेजस्विता आई है, कुछ करने की ललक उत्सुकता आई है, जागृत हुई है उत्कंठा संपूर्ण बनने की, और कोई दिमाग में विचार ही नहीं है, वो उत्पन्न हुआ है, ये लाना है आलस और अलबेलापन, भस्म हो रहा है, आग आई उधर से जलाकर भस्म कर रही है उसको ये भी देखना है राजाई को, रजाई को आग लग गई है और राजाई प्राप्ति की ओर जा रहे हैं। उसके बाद में अगला संकल्प, पुराने संकल्प खत्म, अब तक जो साधारण से संकल्प चलते थे, योग में कल उठना है नहीं उठना है, जल्दी उठूं, 2 बजे उठ गया तो लगता है अभी थोड़ा देर और सोता हूं, और थोड़ी देर सोने के बाद देखते हैं पौने चार तीव्र पुरुषार्थी की बातें चालू है। वो एकदम फेल नहीं होंगे, वो फेल नहीं होते, वो मेंटेन करते हैं अपने आप को। चाहे 12 भी बज जाए फिर भी आदत लंबे समय की पक्की है उनकी, योगी है ना, कोई भोगी थोड़ी है, पर थोड़ा तो पीछे जाएंगे जरूर। संकल्प, उसके बाद में बोल, पुराने बोल समाप्त। तुम ब्राह्मणों की अलौकिक भाषा कौन सी है? इस भाषा के अभ्यासी बनो। 7 जनवरी 2020 की अव्यक्त मुरली, साकार मुरली का वरदान। अव्यक्त भाषा कौन सी भाषा है? भावना की भाषा, नयनों की भाषा और संकल्प की भाषा। ये है योगी रूहानी जीवन की भाषा। इस भाषा के अभ्यासी बनो तब तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। तो ये जो भाषा है इसको क्या करना है? थोड़ा सा परिवर्तित करना है। ये पुरानी भाषा जो है, कौन सी पुरानी भाषा? कर लेंगे, देख लेंगे, गा लेंगे, गे की भाषा हो जाएगा। चिंता मत बाबा। अच्छा बाबा, आप चिंता मत करो, ये वाला तो ये हनुमान की भाषा, ये सब खत्म। संशय की भाषा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये भाषा खत्म। संकल्प, बोल, पुराने कर्म सारे खत्म, पुराने एक्शंस। अब तक जिस तरह से एक्शन लेते थे अभी एक्शंस नहीं हो, ये योग के बाद, और ये काम योग से होगा। योग में कर रहे हैं हम सुबह सुबह अमृत वेला, तपस्वी स्वरूप में। उसके बाद में संबंध संपर्क, अब तक के जिस तरह के संबंध संपर्क थे उसमें विकारों के अंश है। अब तक भी ये भाव गया नहीं, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा युगल है, ये मेरे बच्चे है। आज की मुरली में कहा प्यार सबसे करो, हाथ फिरा दो, पर बाप सच्चा रूहानी प्यार एक बाप से रखो बस। ममत्व एक, ये इन सबसे ममत्व हटाते जाओ, तुम्हें बेहद का वैराग चाहिए। देखते हुए देखो, नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, कल भी था वरदान में इस दुनिया को, आज भी कहा ये वरदान, ये दुनिया क्या है, क्या होगी? तमो प्रधान है ये दुनिया, कब्र दाखिल हो जाएगी। उसके बाद में चलन, बिहेवियर, पहले जैसा बिहेवियर था अब खत्म, अब वैसा बिहेवियर नहीं है, क्योंकि योग की अग्नि ने प्रवेश किया है, पुराने बिहेवियर को, पुरानी चलन को खत्म कर दिया है। उसके बाद में दृष्टि, पुरानी दृष्टि चमड़ी को देखती थी, ये सुंदर या असुंदर, ये प्रीतिकर या अप्रीतिकर, ये हैंडसम या कम हैंडसम, ये काला ये गोरा दृष्टि अलौकिक हो जाए, दृष्टि रूहानी हो जाए, दृष्टि केवल आत्मा को देखे, मणि को देखे, सांप को ना देखे। देखने मात्र से विकार उत्पन्न होते, कल्पनाएं उत्पन्न होती है अंदर, शरीर को देखते ही। उसके बाद में वृत्ति, पुरानी वृत्ति बस। उसके बाद में दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण, एटीट्यूड, पुराना दृष्टिकोण, हमेशा निगेटिव देखना, हमेशा निगेटिव ढूंढना, हर चीज में निगेटिव ढूंढना, सेवा की सब कुछ किया उसमें निगेटिव ढूंढना, पर क्या फायदा हुआ? हर किसी की बात को काटना, निगेटिव निगेटिव देखते रहना, दृष्टिकोण। उसके बाद में पुरानी भावनाएं, पुरानी भावनाओं को बस में कर देना, नई भावनाएं। कौन सी भावनाएं लानी है? ईश्वरीय भावना, परिवार की फीलिंग, एक दूसरे के प्रति वो शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना कि सबका कल्याण हो जाए। कल की मुरली में था ना, कोई बीमार है तो छोड़ दोगे उसको? उसके तंग नहीं होना है, उसकी भी सेवा करो तो क्या होगा? अरे वो जिंदा रहेगा, वो बाप की याद करेगा, उसका थोड़ा पुण्य तुमको भी मिल जाएगा। तो चिमन भाई जी, इसीलिए अभी समझ में आया राज, बीमारों की सेवा करना बहुत पुण्य मिलता है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा से जिएगी, ऐसा नहीं कि भाई बिस्तर पे पड़ी है पता नहीं कब जाएगी। वो जब तक जी रही है बाप को तो याद कर रही है, एक फायदा है उसकी सेवा का। और कल तो कहा था अपने शरीर से भी तंग नहीं हो जाना, ये मत समझना इसको मिट्टी का पुतला है बस, इसकी संभाल करनी है, ये अमूल्य जीवन है, ये अलौकिक जीवन है, बड़े भाग मानुष तन पावा। दृष्टि आंखों से देखना, दृष्टि देख रहे, दृष्टिकोण पर्सपेक्टिव नजरिया व्यू, दृष्टिकोण। वृत्ति अलग चीज है, वृत्ति तो जो उत्पन्न हो रही है संकल्प, वृत्ति अर्थात वाइब्रेशंस जो उत्पन्न हो रहे हैं, वृत्ति अर्थात वृत्ताकार गोल 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 गोल, जैसे तालाब में पत्थर डालो तो क्या होता है लहरें तरंगे, उसको कहते हैं वृत्ति। वृत्ताकार जो है वो है वृत्ति, तो चित्त में जो उसकी तरंगे उत्पन्न हो रही है वो वृत्ति है। उसके बाद में भावना, भावनाओं के बाद कल्पनाएं, पुरानी कल्पनाएं, विकारी कल्पनाएं, विकारी कल्पनाएं, हमें भी कोई मिल जाए उस दिन बताया था ना वो नकी लेक पे, वो अनादरा पॉइंट में, तो वो एक दो कुमार बाइक पर आए, वो देखने लगे सबके साथ कोई ना कोई है, चिल्लाने लगा हे खुदा मेरे लिए भी कोई भेज तो कल्पनाएं करना ये सबसे डेंजर है, फैंटेसीज, सेंशुअल फैंटेसीज। क्रिया और कल्पना का जो प्रभाव शरीर पर है समान है, जो क्रिया से शरीर में होगा वो कल्पना से भी होगा, विचारों मात्र से होगा, कल्पना मात्र से। उसके बाद में कल्पना है, उसके बाद में अगला स्मृति या नहीं, भावना कल्पनाएं स्वप्न, स्वप्न भी पुराने भस्म हो जाए, अब नए स्वप्न आने लगे, कौन से स्वप्न आने चाहिए, सेवा के स्वप्न, बाबा के स्वप्न, उड़ने वाले स्वप्न, सतयुग दिखाई दे, चलो वो भी अच्छा है, स्वप्नों में योग कर रहे, बाबा की याद में खो रहे, वैसे नहीं होते तो कम से कम स्वप्न में तो योग हो जाए, अच्छे अच्छे स्वप्न, प्यारे प्यारे स्वप्न, मीठे मीठे स्वप्न, फरिश्ता बन के उड़ रहे हैं, बाबा से बातें कर रहे हैं, या बाबा हमसे बातें कर रहे हैं, ये भी स्वप्न, बाबा हमारे घर में आए, दरवाजा खोला, देखा बताया नहीं कोई खत लेटर व्हाट्सएप कुछ मैसेज नहीं, वैसे कैसे आ गए, वो कहेगा मैं यहां से जा रहा था सोचा देख लूं तुम क्या कर रहे हो, तो तुम दिख गए इसलिए आ गया, तो हम क्या कहेंगे, आने दोगे कि कहेंगे थोड़ा मैं तैयारी रूम को जरा ठीक करता हूं, वो कभी भी आ सकता है, उसको थोड़ी ना कोई ये चाहिए, पग बिनु चलो ये सुनई बिनु काना, उसको पैर थोड़ी ना जरूरत है तो स्वप्न, हमारे स्वप्न भी परिवर्तित हो जाए, और स्वप्न में वही दिखता है जो सारे दिन भर हमने सोचा है, जो बहुत अवचेतन मन में अंदर ही अंदर चालू है बहुत सूक्ष्म रीति से, वही स्वप्न में दिखाई दे रहा है। उसके बाद में व्यर्थ, सारा व्यर्थ खत्म, नेगेटिव व्यर्थ और अगला नेगेटिव, ये दो चीजें बहुत डिस्टर्ब करती है व्यक्ति को, इधर की बातें उधर की बातें, इसने क्या किया उसने क्या किया ये क्या करता है वो क्या करता है, तुमको करना क्या है, तुम्हारा क्या जाता है, कल की मुरली में था चैरिटी बिगिंस एट होम, तुम्हारा जाता क्या है, तो निगेटिव और एक है फिर है निगेटिव, निगेटिव हर चीज में निगेटिव 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 सोचते रहना, निगेटिव बात करना, हर चीज में निगेटिव ही देखना, उसके कोई अच्छी बात सुना है कितनी भी अच्छी बात सुना है उसमें बड़ी ही सूक्ष्मता से निगेटिव को ढूंढना गहन चिंतन के साथ और तुरंत त्वरित बुद्धि ऐसी है, इतनी कुशाग अभ्यास लंबे समय का है कि कितनी भी पॉजिटिव चीज आ जाए उसमें निगेटिव एकदम मतलब इतना सहज निकल के आ जाता है बाहर कि हम भी हैरान हो जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है क्या किसने कितना भी कुछ अच्छा किया होगा उसकी 15 साल पहले वाली पुरानी निगेटिव एक बात निकाल के सबको सबके मन में जो कंफ्यूजन है मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर करेंगे, कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग अच्छे की, ये वैसा नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो, हम इसे पूरी तरह जानते हैं अच्छे से गहराई से, उसके बाद में अगला जो है वो है पास्ट, पितिवत नहीं हुआ है, पास्ट अतीत, अतीत की सारी बातें भस्म कर देनी, जो हो गया वो हो गया, फुल स्टॉप। अब कल भी कहा था ना, फुल स्टॉप लगा दो बस। अतीत में बहुत कुछ हुआ है, हर एक के जीवन में हुआ है, उसको पकड़ के बैठेंगे तो कहां कैसे होगा। उसके बाद है इच्छा है, लौकिक इच्छा है, भोग की इच्छा है, कामना है, सूक्ष्म कामना है, इतनी सूक्ष्म कामना है, इतनी सूक्ष्म कामना है, हमें पता नहीं वो हमारे अंदर है, पर वो है, चल रही है। रिकॉग्निशन की, प्रेज की, स्तुति की, नाम की, जब मिल जाती है तो खुशी होती है, नहीं मिली तो खींचते रहती है अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर। या फिर लौकिक की कामना है, जो एकदम से ज्ञान में आ गया, उधर का छूट गया, और फिर यहां आने के बाद वो उधर का बचा हुआ है। किसी को कुछ बनना था तो अभी भी इच्छा है कि यहां कुछ बनू, फिर यहां आने के बाद ढूंढते कैसे बना जाए, फिर से पढ़ाई चालू, कुछ तो करते हैं, क्योंकि वो बची हुई अधूरी इच्छा थी। अपनी इच्छाओं को स्टडी करना है। और भी कुछ रह गया इसमें? हो गया ना, शायद 21 हो गए ना। तो ये सारी चीजें देखना है, हम योग में बैठे हैं, उधर से आग की लपटे, आग की ज्वाला आ रही है और ये सब भस्म कर रही है। तो आज योग अग्नि के समान है जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं, इसका अभ्यास करना है। अच्छा, हम शांति।
कुछ भी नहीं।